कल्पना कीजिए कि आप एक भूकंप, एक जंगल की आग और बिजली का अनुभव कर रहे हैं, सभी एक ही समय में, बिल्कुल डरावना। ऐसा ही हुआ जब परमेश्वर सिनाई पर्वत पर उतरे। मूसा ने लोगों को परमेश्वर से मिलने के लिए इकट्ठा कर लिया था, परंतु उनकी आश्चर्यजनक उपस्थिति के आतंक को महसूस करते हुए लोगों ने मूसा से विनती की, तू ही हमसे बातें कर, तब तो हम सुन सकेंगे, परंतु परमेश्वर हमसे बातें ना करे, ऐसा ना हो कि हम मर जाए। 17:8 प्रायश्चित। अपनी बाइबल में निर्गमन 32 खोलें। मूसा 40 दिन और 40 रात के लिए चला गया था, और उस समय के अंत तक लोग प्रतिज्ञा करते हुए ऊब चुके थे। देरी से थककर वे मूसा के भाई हारून के पास इकट्ठा होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल के लाया है, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। 6 सप्ताह से भी कम समय हुआ था जब परमेश्वर ने लोगों को मूर्ति न बनाने की आज्ञा दी थी, परंतु पहले से ही परमेश्वर की सुनी हुई आवाज का प्रभाव फीका पड़ गया और उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा की अवहेलना कर दी। आप पिछले आध्यात्मिक अनुभव पर नहीं जी सकते। पिछला अनुभव कभी भी वर्तमान आज्ञाकारिता का विकल्प नहीं हो सकता। मूसा का उत्तराधिकारी बनने के लिए हारून स्वाभाविक पसंद की तरह लग रहा था। उसके पास पहले से ही एक मान्यता प्राप्त सेवकाई थी, और जब परमेश्वर के लोग उसके पास आए तो उन्होंने उसे आगे बढ़ने और नेतृत्व करने के लिए तैयार पाया। हारून का पहला कदम अपनी नई मंडली के शुभारंभ के लिए धन जुटाना था। लोगों ने अपने गहने दान किए, और इन उपहारों से उसने एक सोने के बछड़े को आकार दिया। हारून उन लोगों का दुखी पिता बन गया जिनकी सेवकाई मुख्य रूप से इस सवाल से प्रेरित थी कि लोग क्या चाहते हैं। सेवकाई को बाजार के सिद्धांतों पर चलने की अनुमति श्रीकता से मूर्ति पूजा की ओर ले जाती है। बेशक हारून ये दावा करना चाहता था कि वह जो कुछ कर रहा था वह रूढ़िवाद की सीमा के भीतर है, और इसलिए उसने कहा, कल यहुवा के लिए पर्व होगा। परंतु हारून का त्योहार आत्मा भी व्यक्ति के एक अनुग्रहकारी वाहन से ज्यादा कुछ नहीं था। और दूसरे दिन लोगों ने बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। दूसरे शब्दों में, जैसे जैसे शराब बाहर आई, लोगों के कपड़े उतरने लगे। यह एक बड़ा उत्सव था, परंतु वो गलत देवता की पूजा कर रहे थे। यह ठहर कर सोचने योग्य है कि आज का एक पत्रकार इस समाचार को किस तरह प्रस्तुत कर सकता है। आखिरकार सुनहरा बछड़ा विश्व धर्म पर पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों के लिए एक महान विषय बन सकता था। यहां सिनाय रेगिस्तान में एक उल्लेखनीय नए धार्मिक आंदोलन का जन्म हुआ। हमारा पत्रकार इस प्रकार से समाचार शुरू करेगा, लोगों ने पूजा करने की एक नई अभिनव शैली को अपनाया, जो कि काफी रचनात्मकता और आत्म अभिव्यक्ति से भरी है। फिर उत्साही नृत्यकियों के साथ कुछ साक्षात्कार होंगे जो कहेंगे कि सुनहरे बछड़े का त्योहार उनके लिए काफी मान्यता से भरा था। लोगों ने शायद सोचा होगा कि इसका कोई अर्थ होगा, परंतु परमेश्वर के लिए यह घृणित था। परमेश्वर के लोगों ने उसकी पहली आज्ञाओं में से एक को तोड़कर खुद को भ्रष्ट कर लिया था। यह इतनी जल्दी और इतनी खुलेआम हुआ कि परमेश्वर इन लोगों का सफाया करने और मूसा के साथ फिर से शुरू करने के लिए तैयार थे। अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। लोगों के पास लौटने के बाद मूसा का पहला काम हारून से सामना करना था। तब मूसा हारून से कहने लगा, इन लोगों ने तेरे साथ क्या किया कि तूने इनको इतने बड़े पाप में फंसाया? क्या लोगों ने हारून को कोई भयानक यातना दी थी? वास्तव में सार्वजनिक मांग ने उसे परमेश्वर की व्यवस्था की अवज्ञा करने के लिए उसे उकसाया था। वह उन्हें पाप की ओर ले गया क्योंकि वो महसूस की गई जरूरतों और बाजार की ताकतों के दबाव का विरोध करने में असमर्थ था। हारून ने जिम्मेदारी से बचने का प्रयास किया। उसने सोने को एक मूर्ति के रूप में गोदने वाले उपकरण के साथ आकार दिया था, परंतु जब मूसा ने अपने भाई को चुनौती दी तो हारून ने कहानी का साफ सुथरा वर्णन दिया। तब मैंने उनसे कहा, जिसके पास सोने के गहने हो वे उनको उतार लाए, और जब उन्होंने मुझको वो दिया मैंने उन्हें आग में डाल दिया, तब ये बछड़ा निकल पड़ा। बस ये अपने आप हो गया। अपने भाई का सामना करने का कोई फायदा ना होने के बाद मूसा ने लोगों को एक निर्णय लेने के लिए बुलाया। जो कोई यहोवा की ओर का है वो मेरे पास आए। हर किसी को पश्चाताप करने का अवसर दिया गया था और भारी बहुमत से लोगों ने पश्चाताप किया। दूसरे दिन मूसा ने लोगों से कहा, तुमने बड़ा ही पाप किया है। ये लोग पहले से ही जानते थे कि उन्होंने पाप किया था और उन्होंने पश्चाताप भी किया था, तो फिर मूसा ने अगले दिन उठकर क्यों कहा, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है? फिर क्षमा का क्या हुआ? मूसा ने इस बात को स्पष्ट रूप से क्यों नहीं समझाया? क्या यह उसका कर्तव्य नहीं था कि वे उन्हें बताए कि उन्हें माफ कर दिया गया है? इन लोगों को खेद है। मूसा उनसे और क्या चाहता है? और क्या यह परमेश्वर का कर्तव्य नहीं है कि वह उन्हें क्षमा करे? नहीं, पापों को क्षमा करने से पहले कुछ और भी होना चाहिए। कहानी के इस पड़ाव पर हम बाइबल के शब्द प्रायश्चित की खोज करते हैं। मूसा ने लोगों से कहा, अब मैं यहोवा के पास चढ़ जाऊंगा, संभव है कि मैं तुम्हारे पाप का प्रायश्चित कर सकूं। जो गलत है उसे सही करने के लिए प्रायश्चित करना पड़ता है। जहां कहीं कोई अपराध होता है हम प्रायश्चित के प्रश्न का सामना करते हैं, चीजों को सही करने के लिए क्या करना होगा। एक पादरी कहते हैं, एक बार जब वे कॉलेज में एक फुटबॉल मैच खेल रहे थे तो दूसरी टीम ने गोल पर एक सफलता हासिल की और वे आखिरी डिफेंडर थे। हताशा में वे गोल लाइन से गेंद का सफाया करने में कामयाब रहे। दुर्भाग्य से गेंद कॉलेज के अध्यक्ष के अध्ययन कक्ष की ओर बढ़ी और उनकी खिड़की को तोड़ दिया। अध्यक्ष इस बारे में उल्लेखनीय रूप से दयालु थे, परंतु उन्हें ये आवश्यकता थी कि पादरी खिड़की को बदले और सारी गंदगी को साफ करे। इसे सही करने के लिए ये कार्य की आवश्यकता थी। पश्चाताप के बारे में समझने वाली पहली बात यह है कि इसकी आवश्यकताओं को हमेशा घायल पक्ष द्वारा निर्धारित किया जाता है। टूटी हुई खिड़की के पास पादरी अपनी गंदी निक्कर में वहां खड़े होकर उन्हें नहीं लगा कि उनके पास बहुत अधिक सौदेबाजी की शक्ति थी। उन्हें बहुत खेद है, उन्होंने कहा, यह अच्छा था परंतु यह पर्याप्त नहीं था। नुकसान हो चुका था और इसे ठीक किया जाना था। वे कहना चाहते थे, मैं ऐसा फिर से नहीं करूंगा, परंतु इसका भी कुछ ज्यादा फायदा नहीं होता। तुम्हें यह करने की जरूरत है, अध्यक्ष ने कहा, गंदगी को साफ करो और खिड़की को बदलो। यह प्रायश्चित था, वह कीमत जो चीजों को सही बनाने के लिए चुकानी थी। परमेश्वर के खिलाफ हमारी गलतियों को सही करने के लिए क्या करना होगा? कुछ लोगों को लगता है कि सिर्फ क्षमा प्रार्थी होना हर चीज का समाधान है। उन्हें लगता है कि अगर हम वास्तव में पश्चाताप करते हैं और वास्तव में बदलने की कोशिश करते हैं, तो परमेश्वर के साथ हमारी सभी चीजें सही हो सकती है। परंतु सिर्फ क्षमा प्रार्थी होना काफी नहीं है। लगभग 20 लाख लोगों ने पश्चाताप किया था और फिर भी एक समस्या थी। हमने जो किया है उसके लिए खेद व्यक्त करने से हमारे पाप का दोष दूर नहीं होगा। हमें प्रायश्चित की आवश्यकता है। शायद प्रायश्चित करना कुछ ऐसा था जो मूसा कर सकता था। वह फसा के मेमने की मृत्यु से जानता था कि परमेश्वर लोगों के जीवन को बचाने के लिए एक विकल्प को स्वीकार करने के लिए तैयार थे। क्या होगा अगर मूसा इसका विकल्प हो सकता हो तो? मूसा ने लोगों से कहा, अब मैं यहोवा के पास चढ़ जाऊंगा, संभव है कि मैं तुम्हारे पाप का प्रायश्चित कर सकूं। तो हमारे पास एक स्वयंसेवक है। पुराने नियम के सबसे महान आध्यात्मिक गुरु ने आगे बढ़कर परमेश्वर से कहा, हाय हाय, उन लोगों ने सोने का देवता बनाकर बड़ा ही पाप किया है, तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरा नाम को काट दे। मूसा लोगों के लिए अपना प्राण त्यागने को भी तैयार था, और यदि उसे लोगों के खातिर पश्चाताप करने के लिए नरक में भी प्रवेश करना पड़ता तो वह ऐसा करने के लिए भी तैयार था। परंतु परमेश्वर ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। कोई सौदा नहीं मूसा, प्रायश्चित करना तुम्हारे बस के बाहर है। मूसा के अपने खुद के पाप थे, और जो व्यक्ति अपने स्वयं के पापों के साथ हो वो दूसरों के पापों के लिए प्रायश्चित करने की स्थिति में नहीं हो सकता। इन लोगों के लिए जीवन चलता रहेगा, परंतु बिना प्रायश्चित के वे परमेश्वर की उपस्थिति को खो देंगे। जब लोगों ने यह सुना, वे लोग विलाप करने लगे। अब वे सबसे निजी तरीके से सबसे बुनियादी सवाल का सामना कर रहे थे, परमेश्वर की उपस्थिति को वापस लाने के लिए क्या करना होगा? यदि क्षमा प्रार्थी होने से कुछ नहीं होगा, और यदि मूसा कुछ नहीं कर सकता है, तो हमारे पापों के प्रायश्चित करने के लिए क्या करना होगा? शायद परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने के लिए एक गंभीर समर्पण परमेश्वर की उपस्थिति को वापस ला सकेगी। निर्गमन 25 से 30 में परमेश्वर ने तंबू बनाने के लिए सटीक आज्ञाएं दी थी, और निर्गमन 36 से 39 हमें बताता है कि परमेश्वर के लोगों ने इन आज्ञाओं का सावधानी पूर्वक विस्तार से पालन किया। परमेश्वर के लोगों ने ठीक वैसा ही किया जैसा कि उन्हें करने के लिए कहा गया था। जिस जिस काम की आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी, इसराइलियों ने उसी के अनुसार किया। कल्पना कीजिए कि एक महिला तंबू के पर्दे पर सिलाई कढ़ाई कर रही है। जैसे वह परमेश्वर के विस्तृत निर्देशों का पालन करती है, वह सोचती है, यदि मैं आज्ञाकारी हूं तो शायद परमेश्वर हमारे पास वापस आ जाए। एक बढ़ई की कल्पना कीजिए जो चाहता है कि काश उसने प्रभु को कभी दुखी ना किया होता। वह सोचता है, यदि मेरे हाथ परमेश्वर की आज्ञा को पूरा कर सकते हैं तो शायद वह हमें फिर से आशीष दे सके। परमेश्वर के लोगों ने खुद को सावधानी पूर्वक आज्ञाकारिता के लिए समर्पित कर दिया था, परंतु इन सब के बाद भी परमेश्वर की उपस्थिति के लौटने का कोई संकेत नहीं था। उन्होंने सोचा होगा कि परमेश्वर के साथ चीजों को सही बनाने के लिए क्या करना होगा। 7 महीने बाद, जिसमें लोग परमेश्वर की उपस्थिति के लौटने के लिए तरस रहे थे, मूसा ने उन्हें बताया कि यह कैसे हो सकता है। यह वो काम है जिसके करने के लिए यहोवा ने आज्ञा दी है कि तुम उसे करो, और यहोवा की महिमा का तेज तुमको दिखाई पड़ेगा। वहां एक स्तंभ सन्नाटा छा गया होगा, क्योंकि लोग ये सुनने के लिए इंतजार कर रहे थे कि वो क्या कहेगा। तब मूसा ने हारून से कहा, यहोवा की आज्ञा के अनुसार वेदी के समीप जाकर अपने पाप बलि और होम बलि को चढ़ाकर अपने और सब जनता के लिए प्रायश्चित कर, और जनता के चढ़ावे को भी चढ़ाकर उनके लिए प्रायश्चित कर। परमेश्वर की उपस्थिति और आशीष तभी वापस आ सकती थी जब प्रायश्चित किया गया हो। हारून ने वैसा ही किया जैसा परमेश्वर ने आज्ञा दी थी। लोगों ने अपनी सांसें रोक रखी होगी, क्योंकि वे ये देखने के लिए इंतजार कर रहे थे कि क्या होने वाला है। तब मूसा और हारून मिलाप वाले तंबू में गए और निकलकर लोगों को आशीर्वाद दिया। तब यहोवा का तेज सारी जनता को दिखाई दिया। परमेश्वर वापस आ गए थे, और इसे देखकर जनता ने जय जयकार का नारा लगाया और अपने मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। कल्पना कीजिए कि एक दंपति अपने तंबू में बैठे हैं, उन्होंने जो कुछ भी अभी देखा उसके बारे में बात कर रहे हैं। मैंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखा है, पति ने बोला। किसने कल्पना की होगी कि एक जानवर का खून बहाने से परमेश्वर की उपस्थिति वापस आ जाएगी। हां, यह अविश्वसनीय है, वह कहती है, परंतु मुझे समझ में नहीं आता कि बलिदान ने ऐसा क्या किया जब क्षमा प्रार्थी होने के उन सभी महीनों और आज्ञाकारिता के उन सभी महीनों और यहां तक कि मूसा के हमारे लिए अपना जीवन देने के प्रस्ताव का भी कोई फर्क नहीं पड़ा। जरूर इस बलिदान में कुछ बहुत शक्तिशाली बात है जिसमें रक्त का भाव शामिल है। बाइबल की कहानी के इस शुरुआती चरण में भी परमेश्वर यीशु के आने की तैयारी कर रहे थे। पुराने नियम में बलिदानों का पूरा उद्देश्य हमारी सोच को आकार देना था, ताकि हम समझ सके कि परमेश्वर के पुत्र को दुनिया में क्यों आना पड़ा। क्रूस पर अपनी मृत्यु से यीशु ने वो पूरा किया जो पुराने नियम के बलिदान केवल अनुमान लगा सकते थे। मसीह ने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया, वह उन सभी के लिए परमेश्वर की उपस्थिति और आशीर्वाद को वापस लाता है जो उस पर भरोसा करते हैं। आइए हम देखें कि हमने आज क्या सीखा। हो सकता है कि आपको लगे कि अगर आपको अपने पापों के लिए पर्याप्त खेद है तो आप परमेश्वर के साथ सही होंगे, या हो सकता है कि आपको लगे कि यदि आपकी कलीसिया में भाग लेने से और अपनी प्रार्थनाओं को कहने से आप अपने पापों के लिए प्रायश्चित कर सकते हैं। ये चीजें अच्छी है, परंतु वे पर्याप्त नहीं है। यह यीशु का बलिदान और उसके लहू का बहना है जो परमेश्वर के साथ प्रायश्चित करता है, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी।